एक भक्त ने एक बार श्रील प्रभुपाद से यह प्रश्न पूछा, हमारी क्या योग्यता है? सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के, सबसे आध्यात्मिक दाम का ज्ञान प्राप्त करने की क्या योग्यता है? श्रील प्रभुपाद नम्रता से जवाब दिए और ईमानदारी से बोले, उन्होंने जवाब दिया आपकी कोई योग्यता नहीं, मैंने आपकी योग्यता बनाई। ये एक चीज है जो वृंदावन में हमें बहुत गंभीरता से विचार करना है। यहाँ पर कई वर्षों के लिए राधा दामोदर मंदिर में जब श्रील प्रभुपाद ने अभी वहाँ पे जाओगे दामोदर मंदिर, अभी तो बहुत ऐश्वर्यशाली है, पहले कैसे था उसकी अपेक्षा। जब वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे, तात्पर्य लिख रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो अपने गुरु महाराज से भक्ति सिद्धांत ठाकुर से प्रार्थना कर रहे, रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे थे, सब महान आचार्यों के बारे में आचार्यों से प्रार्थना कर रहे थे परंपरा के, उनको मदद करने के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, जिससे कि उनकी उनकी इच्छा पूरी हो सके। नित्यानंद प्रभु और भक्ति विनोद ठाकुर सबकी इच्छा को पूरी करने के, जिससे वृंदावन का प्रेम जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया पूरे दुनिया में देने के। श्रील प्रभुपाद अकेले गए, एक एक निबंध जिन्होंने लिखा उसमें वो लिखते हैं, पहले जो सब कुछ सपने की तरह नष्ट हो जाता है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने गुरुदेव की आज्ञा को पूरा करने के लिए। '1922 में जब वो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से पहली बार मिले, उनको आज्ञा दी गई थी, आप एक बुद्धिमान नवयुवक चैतन्य महाप्रभु के संदेश को ग्रहण करो और उसको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। उस समय विवाहित थे, उनके पास संतान थे, उनके बच्चे थे, इतिहास में कोई सफल नहीं हुआ, इस संदेश को कोई फैला नहीं सका था भारत के परे।
श्रील प्रभुपाद
श्री प्रभुपाद ने अपने प्रश्न कहे और वो बताते थे कि मैं बहुत खुश था कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे पराजित कर दिया। और फिर क्षण उसी आज्ञा को उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। ग्यारह साल बाद जब उनको दीक्षा मिली में, उनको गुरु महाराज के स्वप्न आए। भिक्षा मांगते हुए संन्यास लेने के विशेष उद्देश्य के लिए। सितंबर 17, 1959 शिला प्रभुपाद मथुरा में उन्होंने संन्यास लिया, केशव गौड़िया मठ। और बहुत रुचि कारक भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज उनको दीक्षा मिले, लेक्चर देने के लिए कहा। अक्सर होता था जनरली जो दीक्षा लेने वाला लेक्चर नहीं देता। ब्रजवासी हिंदी बंगाली वाले जानने वाले, अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम लोग थे। श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में भाषा दी। प्रभुपाद जी का जीवन था उनके गुरु महाराज से मिलना। उन्होंने भौतिक विचार नहीं देखे। श्रील प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चक्र ठाकुर इस श्लोक का तात्पर्य लिया। जो इस मार्ग पर हैं, उनको एक दृढ़ निश्चय रहना चाहिए, उनका उद्देश्य एक होना चाहिए। इसका मतलब है कि गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानना। वो सब कुछ छोड़ कर गए, चैतन्य महाप्रभु के भाव में सब छोड़ कर। पूरे दुनिया को कृष्ण प्रदान करने के लिए यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में श्री प्रभुपाद जी ने प्रार्थना भी की, न केवल इच्छा की। वो रोए अथक अपने आप को तैयार करने के, इस मिशन के लिए तैयार करने के लिए। सत्तरवें जन्मदिवस से पहले वो जलदूत सवार, कलकत्ता से सवार हुए जलदूत, उन्होंने अपने बेटे वृंदावन को विदा किया। एक ऐतिहासिक है, तो इतिहास में बहुत कम घटनाएं हैं कि 70 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति किसी की मदद के बिना वो वृंदावन को छोड़कर जा रहे। दो सागर और 3 द्वीप पार करके कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। लोग अधिकतर समय लोग रिटायर होने को वृंदावन जाते हैं।
Yeah.
इसलिए प्रभुपाद जी की दयालु प्रार्थनाएं थी और उनका चिंत्य त्याग की भावना जो था और है और जो हमेशा रहेगा, ये योग्यता जिसे दुनिया के भाग के सब लोग उनको वृंदावन का संदेश मिल सके, एकदम शुद्ध रूप में हम यहाँ पर आए हैं। इसमें करीब 5,000 भक्त हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और भी कहीं आएंगे, विशेष करके बहुत सारे बंदर। इस कार्तिक के महीने में सब सालों में सबसे पवित्र महीना, कार्तिक जो महीना है वो अहेतु की दया प्रकट करता है श्रीमती राधा रानी के। वृंदावन में कुछ भी भक्ति की जाती है उसमें ज्यादा शक्ति होती है हमें शुद्ध बनाने के लिए, और कहीं भक्ति करने से ज्यादा महत्व वृंदावन में भक्ति का। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अपराध जो है वो भी कई गुना ज्यादा हो जाते कार्तिक के महीने में, वो भी कई गुना ज्यादा का फल हो जाता। वृंदावन में होना भक्तों के संगति में इस समय एक अचिंत्य सौभाग्य है जिसके हम योग्य नहीं हैं। ये हमें प्रदान किया गया है, ये भगवान की भेंट है, एक अतुलनीय भेंट है। अगर हमारा हृदय कृतज्ञ है, अगर हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं हमारी नम्र सहानुभूति दिखा प्रभुपाद की कृपा के कृतज्ञता, और हमारे सारे पूर्वज आचार्य सारे एकत्रित वैष्णव और परम भगवान श्री राधा श्याम सुंदर, और हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं अपनी सेवा भावना के द्वारा। वृंदावन भक्ति की भूमि है, रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। सच्ची भक्ति जो है जिसमें अपने स्वयं के स्वार्थ की भावना नहीं, योगिक शक्तियों की भी इच्छा नहीं और मुक्ति की भी इच्छा नहीं, वो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जा रही, जो कि दासों के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति को अनेक रूप में प्रकट करते हैं। शिक्षाष्टकम में बताया गया न धनम न जन्म न सुंदरम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे मेरे प्रभु, मैं अपना शरीर मन सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूँ। मुझे संपत्ति भी नहीं चाहिए, मैं दुनिया के सुख भी नहीं चाहिए और मुझे महिमा भी नहीं चाहिए, अनुयायी भी नहीं चाहिए, प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए। मुझे बड़े विद्वान बनने की इच्छा नहीं, मुझे योगिक सिद्धि भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। और अगर आप ऐसा चाहते हैं, मैं जन्म जन्म जन्मांतर भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, अपने जीवन को मूर्तिमान प्रकट कर दिया है, श्रीमद् भागवत का मूर्तिमान स्वरूप। सवाय पुंसान परो धर्म यतोर भक्तिर अधोक्षी अहेतु की अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्ध। सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है भगवान के प्रति सेवा, प्रेममय सेवा करना श्री कृष्ण के प्रति। ऐसी भक्ति जो है वो बिना किसी कोई हेतु नहीं होना चाहिए, उसका अपने स्वार्थ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और हमारे पर जो स्थिति कोई भी स्थिति आए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में भक्ति का अभ्यास करना बहुत सारे बाधाएं आएंगी। ये द्वंद्वों का बना जगह सुख दुख महिमा और ये सब सफलता असफलता अच्छा स्वास्थ्य बुरा स्वास्थ्य जन्म मृत्यु ये सब बने रहेंगे। हर एक व्यक्ति पे ये सब चीजें आती रहती और कभी कभी अपने बद्ध स्वभाव के कारण हमें जो पसंद आता है वही हम स्वीकार करने। कृष्ण बहुत दयालु हैं और हम ऐसे चैलेंजेस भेजेंगे, जो हमको नहीं चाहिए वो भेजेंगे। अगर हमें पसंद है तो वो चुनौती नहीं रहती। बृहद भागवत अमृत में कहा गया गोप कुमार अलग अलग जगहों पर विचरण करते हैं, भगवान उनसे कहते हैं मेरे प्रिय भक्त आपने इतने सारे कठिनाइयों को सहन किया मेरे लिए, मैं आपका वापस घर में स्वागत करता हूं। कृष्ण ने उनको गले लगाया। सारे सद्गुणों का स्रोत कृष्ण है असीमित मात्रा में। कृतज्ञ हृदय के बिना भक्ति का बीज जो है वो अपने जड़ों को ज्यादा गहराई से नहीं उगा सकता और नहीं उसके अंदर ऊपर जाने के और प्रेम के फल प्रकट होने के लिए योग्यता है। कृष्ण अनंत रूप से महान है। जो भक्त है, जो प्रयास करते हैं, श्रद्धालु बने रहना चाहते, सेवा करना चाहते हर स्थिति में, अगर हम वास्तव में देख रहे हैं कृष्ण को हमारे सेवा के विषय में, जब हमें कठिनाइयां भी आती हैं, हमारे हृदय मन शरीर में कठिनाई भी आए, गहराई में हमें उत्साह रहता है कि कृष्ण मुझे आने दे रहे हैं हमें शुद्ध बनाने के लिए, मेरे को अपनी सेवा की इच्छा प्रकट करने के लिए। जो प्रेम का अर्थ है, भक्ति के शुरुआत स्टेज में बस हमारा इरादा होना चाहिए प्रेम का, और वही है जो कृष्ण देखते हैं, और वही कृष्ण को अनुभव होता है। हमारा इरादा उनके प्रति प्रेम करने का, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण जो है हमारी, जो सब कुछ अर्पण किया जाता है वो नहीं स्वीकार करते, कृष्ण उनके भावना को देखते हैं, और जो उद्देश्य है जिससे कि वो अर्पण किया गया है हम यहाँ पर वृंदावन में हैं, कृपा के कारण, आशीर्वाद के कारण, और हम ये प्रकट करना चाहते हैं हमारी सच्ची प्रार्थनाओं के द्वारा प्रेम से सेवा करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद ने हमें कृष्ण भावना बहुत व्यवहारिक ढंग से सिखाई, ये नहीं कि हम खाली थियोरेटिकल प्रेयर करें, हर क्षण हर दिन वो प्रार्थना के लिए एक अवसर है, सच्चे दिल से नाम जप करने के लिए, वैष्णव की सेवा करने का प्रयास करने, इस मिशन को प्रचार करने के लिए, जिसके लिए प्रभुपाद ने पूरी दुनिया के लिए प्रचार किया। प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने से, गीता भागवत पढ़ने से, एक उसके साथ विषय पर चर्चा करनी, जब हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं या पुस्तक बांट रहे हैं, यस ट्रेन में बैठे जप कर रहे हो, या बॉम्बे ट्रक जाम में हो, हर क्षण एक अवसर है अपने कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए, और इस तरीके से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि दुनिया में सारे भक्त मायापुर और वृंदावन धाम आए, हर साल एक दूसरे के साथ संग करने के लिए, जिससे कि जो पवित्र धाम में जो भक्ति का वातावरण है वो अपने आप में समाने के लिए, हर क्षण का उपयोग श्रवण और कीर्तन में कर सकें। ये यात्रा का रूल है, ये ऐसा नियम नहीं है जो कि लिखा गया है, या लेकिन एक नियम है जिससे हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकें अपनी इच्छा से। हर जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, वृंदावन में कार्तिक में रहना हजारों भक्त सबसे सौभाग्य की बात है। सच्चे कोई भी चीज सच्चे भक्ति से करते हैं श्री वृंदावन धाम उसके साथ आदान प्रदान कर। श्री राधा और श्याम सुंदर का शाश्वत धाम जहाँ पर हर धूल का कण जो है चिंतामणि है। यहाँ पर सारे आचार्यों का कृपा है। हमारे सबके हृदय में जो जहाँ भी हम हैं कृष्ण हमारे भौतिक गुण या दुर्गुण में देखते हैं। चाहे हम बड़े हों या छोटे, चाहे हम मशहूर हैं या हमें कोई भी नहीं जानते, चाहे लोग हमें पसंद करें या घृणा करें, कृष्ण हमारे हृदय की प्रामाणिकता देखते हैं और हमारी सेवा करने की इच्छा को देखते हैं और उनके नामों का गाने की उनका नाम पुकारने के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इस सुंदर प्रार्थना में हम कृष्ण को संबोधित करते हैं करुणा सिंधु करुणा के सागर। हे का मतलब है एक पुकार, नम्रता के साथ पुकारना, कृष्ण को पुकारना। जैसे छोटा बच्चा निस्वार भाव से अपनी माता को पुकारता है, ये छोटा बछड़ा जो है जब वृंदावन के बंदरों से घिरा तब वो पुकारता है भगवान को, हे कृष्णा। हम कृष्ण को पुकारते हैं जो कि करुणा के सागर हैं। हमें इस प्रकार के सागर की कोई कल्पना नहीं है। जब प्रभुपाद के समय जब समुद्र पार करना था तब नौका में जाना पड़ा न्यूयॉर्क। चाहे वो अटलांटिक ओशन हो पैसिफिक ओशन हो सागर हो, ये तो बूंद के ही समान है। ये कृष्ण की जो करुणा सागर के सामने ये छोटे से बूंद है, कृष्ण की कृपा का जो सागर उसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसके न किनारा है, वो अनंत है सारी दिशाओं में। और ये असंख्य और ये जो भगवान की दया है, कृष्ण सब कुछ हमारे में से हर एक के प्रति भेज सकते हैं। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण जो है कई बार प्रकट होते हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वत त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जन। जो कृष्ण के अवतार के दिव्य स्वभाव को समझ लेते हैं वो कभी फिर जन्म नहीं लेते, वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान विशेष रूप से आते हैं। भक्तों के प्रेम के साथ आदान प्रदान करें और उस प्रेम के आदान प्रदान सारे सौभाग्यशाली जीवों के उनके प्रेम के सागर के प्रति आकर्षित करने। श्रीमद् भागवत में बताया गया भगवान के अनेक अवतार हैं, मैं सिर्फ कुछ के बारे में बोलूंगा। भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट, एक महान राजा थे सत्यव्रत, उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान एक मछली के रूप में आए। सत्यव्रत कुछ पानी मांगने, पानी में से जब पानी लेने गए तो छोटी सी मछली आए, उनके हाथ को हाथ में आ गए थे तो उन्होंने मछली को वापस को फेंक दिया और मछली बोलने लगी। वो कोई ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, वही छोटे मछली की आवाज में कहने लगे। मुझे पता नहीं मछली कैसे बोलना, अपने कद के अनुसार। मेरे को यहां से बाहर निकालो, यहां पर बहुत सारे मछली हैं। सत्यव्रत को मालूम था ये भगवान है, बात करने वाली मछली साधारण नहीं, को बाहर निकाल। और फिर मछली है और बड़ी हो गई, फिर तो कुएं में डाला, वो कुएं के समान बड़े हो गए, सरोवर में डाल, सरोवर के समान बन गए, तो फिर सागर में डाल। फिर उन्होंने देखा बहुत सारे बड़े मछली है। सत्यव्रत महाराज वो समझने लगे उनको पता चला वो भगवान है, तो फिर भगवान ने बताया कि आप एक बड़ी नौका आएगी, उसमें सब जड़ी बूटियों को रखना, और भगवान बड़े मछली के रूप में आए। और फिर मत्स्य अवतार उनको बचा के ले गए। बहुत सुंदर सबक, अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं भ्रम के मृत्यु भी आ जाए तो भी भगवान रहेंगे रक्षा करने के लिए। देवता जो अलग अलग स्तर पर हैं, भक्ति कुछ शुद्ध भक्त हैं, कुछ कर्म मिश्र भक्त हैं, कुछ ज्ञान मिश्रित भक्त हैं। भगवान ने आज्ञा दी कि समुद्र मंथन करो और वो प्रयास कर रहे थे, और उनके बड़े बड़े पर्वत और पर्वत धीरे धीरे नीचे जाने लगा। भगवान भक्तों के आदान प्रदान करने कूर्म के रूप में आए, बड़े विशाल रूप में। भगवान एक पर्वत के रूप में आया। जब उनको मंथन किया जा रहा था तो भगवान को बहुत अच्छा लग रहा था, उनकी खुजली दूर हो रही थी, क्योंकि भक्तों की सेवा को स्वीकार कर सके। और फिर भगवान वराह देव के रूप में, भगवान वराह देव ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि धरती जो है सागर में डूब रही है, हम कुछ नहीं कर सकते उनको बचाने के लिए। निशा भाव से वो कहने लगे, कृष्ण पहले बात किसी के मानव से तो पुरुष से तो जन्म नहीं होता, तो ब्रह्मा जी के नाक से पैदा हुआ। व्यक्ति के नाक से प्रकट, वो अंगली के साइज कहते हैं, वो धीरे 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 बड़े होते गए। ब्रह्मा हमारे साइज का नहीं है, और बड़े बड़े होते गए, वो धरती को ऊपर उठाया, धरती को दांतों से ऊपर उठाया, हम सबके ऊपर कृपा दिखाने के लिए। फिर भगवान नरसिंह देव के रूप में आए, पहले उन्हें प्रहलाद महाराज को बहुत सारे तकलीफें सहन करने के लिए चुनौती दी, अग्नि में डाला गया, सागर में डाला गया, सांपों के बीच। 5 साल के बालक प्रहलाद वह हर स्थिति में कृष्ण को याद कर रहे थे। जब हिरण्यकशिपु पूरे धरती के नेत प्रहलाद को चैलेंज किया, कौन है भगवान जिसकी आप पूजा कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मुझे भगवान विष्णु से मिलता है, कहाँ है विष्णु? प्रहलाद बोले, वो सब जगह पर है। प्रहलाद की दोस्ती करने, उनको मूर्ख बताने के लिए सब जगह पे खंभे में भी है। प्रहलाद बोले, हाँ इसी में भी मेरे को देखता हूँ कैसे आते हैं, कैसे बचाने के लिए। हिरण्यकशिपु ने जोर से अपने मुट्ठी से खंभे पर प्रहार किया, इसकी तरह नहीं, ज्यादा जोर, और तलवार लेके प्रहलाद के सिर को काटने है। प्रहलाद हाथ जोड़ के निर्भय थे, अगर कृष्ण ने रक्षा कर रहे हैं तो कोई मुझे मार नहीं सकता, और अगर आप मारना चाहते हो तो मैं जाने के तैयार हूँ। मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। भक्ति विनोद ठाकुर ये वैष्णव का भाव दिखाते हैं, कृष्ण अगर आप मेरी रक्षा करना चाहते हो आप रक्षा करो, अगर आप मुझे मारना चाहते हो मुझे तुरंत मार दो, मैं आपका सेवक हूँ बिना किसी शर्त के, मेरा शरीर मेरा मन मेरा घर सब कुछ आपका ही है। और प्रहलाद के शब्दों को सही बनाने के, छोटा सा बालक, नरसिंह देव प्रकट हुए, बिल्कुल अचिंत्य, अपने भक्त के शब्दों को पूरा करने के लिए खंभे से प्रकट हो, दूसरे भक्त को बचाने के लिए आधा शेर और आधा मानव के रूप से प्रकट है और बड़े क्रोधित थे। और हिरण्यकशिपु को मुक्त करने के बाद इतने क्रोध में थे, ब्रह्मा लक्ष्मी ऋषि देवता कोई भी नरसिंह भगवान के पास नहीं आ सकते। फिर छोटे से प्रहलाद बहुत छोटे थे, और भगवान नरसिंह देव के पास गए और भगवान ने अपना प्रहलाद के सिर पे हाथ रखा, उनको इतना भाव में आनंद अनुभव हुआ भक्त के प्रेम से, जय उनका क्रोध शांत, भगवान सिंहदेव बिल्कुल शांत हो गए। ये प्रेम का आदान प्रदान। एक वैष्णव के लिए ये हिरण्यकश्यप का वध तो इंसिडेंटल है, जो मुख्य चीज है वो मुख्य चीज है प्रहलाद और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध। और हमारे हृदय के भगवान के हम सब के प्रति ऐसा प्रेम, अगर हम प्रहलाद के पद चिन्हों में चल, महाजन ये न गत सा पंथ, ये सारी कहानियां सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, खाली प्रवचन देने के लिए नहीं है, हमारे जीवन में जो है अनंत अनंत आशा प्रदान करने के लिए। भगवान आए वरुण देव के रूप में, बलि महाराज जो प्रहलाद के बेटे के बेटे थे, और पहले भगवान उनकी परीक्षा ली, उनको सजा भी दी, और एक वो एक बौने के रूप में आके तीन कदम जमीन मांग रहे, बलि ने कहा मैं दूंगा, शुक्राचार्य बोले कि तुम सब कुछ खो बैठो, कुछ भी मत दो उनको। बलि महाराज अपने गुरु के प्रति अपराध करते जिनको शाप देते, और तीन कदम देने के बाद वामन देव दो लेते, सब कुछ ले लेते हैं, और बलि महाराज को बिल्कुल अपमानित कर देते, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, उनको बांध दिया गया एक सांपों की रस्सी से, और अब वो कैदी बन गए और उनको लिया जा रहा, भगवान ने सब कुछ छीन लिया। और बाली ने कहा बस मेरे प्राण ही बचे, मेरे सिर के ऊपर पैर रखो, मैं सब समर्पण कर रहा हूं। उनको बहुत मुश्किल कठिनाइयों से भेजा गया और दर्द भी, लेकिन क्योंकि मैं समर्पण किया भगवान उनको वैकुंठ लोक दिया, भगवान उनके द्वारपाल बन गए, जो भगवान उसको वामन देव को देख सके हमें सतत रूप, करुणा सिंधु इन इन कहानी से कितने सारे सीखने को चीज मिलती है। भगवान का कैसे अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शीर्षक है भगवान वामन देव के रूप में, बहुत अनंत कहानी है जटायु की। वो एक सादे पक्षी थे और पक्षियों में, और वो गिद्ध योनि में थे, वो मोर नहीं थे जो बहुत सुंदर नृत्य करें, वो कोयल भी नहीं थे जो मीठे मीठे गा रहे हैं, वो हंस नहीं थे जो अमृत का पान कर रहे हैं, वो ऐसी भी ईगल भी नहीं थे कि ऊपर जाते, वो तो गिद्ध थे। गिद्ध किस लिए मशहूर होते हैं, मतलब जो मरे हुए शरीर को खाने वाले हैं, ऐसे उनकी प्रसिद्धि है। क्या किसी की तुलना गिद्ध के साथ करके स्तुति की गई है? वो तो मृतशरु लेते, जटायु सबसे नीचे योनि के थे। जब सीता रावण के द्वारा ले जा रही थी, सीता जटायु से बोली, लड़ने का प्रयास मत करो। जटायु नहीं सहन कर सके, वो पूरी शक्ति से लड़े। रावण के विरुद्ध लड़ाई घोषित कर दी, गधों को मार दिया और रथार्थी को मार दिया। अपने चोंचों से रावण के टुकड़े करने लगे, रावण उनके पंख काट दिए, उसके पैर काट दिए। और सीता जाके उस पक्षी को ले लगाए, के प्रति बहुत कृतज्ञ थे, आपने अपना जीवन मेरे लिए दिया। फिर राम सामने आए और उन्हें देखा, इतना सारा खून, और राम बोले, ये पक्षी को सीता खाया है, इसी क्षण मैं इसको मार दूंगा, तो यमराज के दरबार भेज दूंगा। क्या आप ये आशा करोगे अपना पूरा प्राण देने के बाद जटायु मरने के स्तर पे थे? बताने समझाने का प्रयास किया, मैं जटायु हूँ, क्या हुआ बताया। राम ने गले लगाया, अपने भुजाओं से गले, मेरे हृदय से लगाया, जटायु को बताया, आज के दिन आपने जो सेवा की उसके लिए मैं आपको वैकुंठ भेजूंगा, आप धाम में। जटायु राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग कर दिए, और राम रो रहे थे, मेरे पिता के दशरथ की मृत्यु, सीता का खोना भी मुझे इतना दर्द नहीं होता जितना कि जटायु से इतना विरह में दुख हो रहा है, जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया। भौतिक दृष्टि देखा जाए तो जटायु हार गए, वो असफल हुए, रावण, भगवान राम ने ये नहीं देखा कि जटायु सफल है असफल है, भौतिक दृश्य देखा नहीं, उनके भक्ति की प्रामाणिकता देखी। और राम रो रहे थे पूरे दुनिया को दिखाने के लिए अपने भक्त का, कि हम हारे या जीते फर्क मेरा प्रेम भगवान को प्रसन्न कर, सफलता का एक ही स्तर है भगवान को प्रसन्न, और भगवान को अप्रसन्न करना वही असफलता है। चाहे हम पूरे दुनिया को भी जीत लें। हनुमान जी सीता को प्राप्त करने के लिए समुद्र लांग कर गए, सारे बाधाओं को पार करते हुए, सीता को इतने आनंद आशा प्रदान की, रावण का सामना किया, बहुत रिस्क ली, और लंका नगरी का प्रमुख भाग जला भस्म कर दिया, और समुद्र पार करके वापस लौट कर आए और भगवान श्री राम को संदेश दिया। और भगवान राम वो इतने भाव विवल हो गए, बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ खो लिया, मैं जंगल में रह रहा हूं, मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस मेरे पास मेरा प्रेम है। भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया, और वही सबसे बड़ा इनाम था, भक्त का प्रेम से गले। हनुमान जी के लिए सब कुछ था। विभीषण जो रावण का भाई, उसने रावण को त्याग दिया और राम को समर्पण करने आया। सुग्रीव और सारे बंदरों ने कहा मत स्वीकार करो, हालांकि राम परम भगवान है, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली, हमेशा भक्तों से सलाह, कैसे हमारा एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। सुग्रीव बोले कि विभीषण को मार देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए, उनको तिरस्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि रावण का भाई है। अब उनका क्रोध है, हो सकता है कि लड़ाई में, हो सकता है कि अपने भाई का ही साइड ले, क्योंकि प्रेम ये बहुत जोखिम का हो सकता है। हनुमान जी से पूछा गया कि आपका क्या मत है, हनुमान जी बोले मैंने उनका मुख देखा, उनकी आवाज को देखा, वो प्रामाणिक, उनको विश्वास है, हमको तुरंत भाई के रूप में स्वीकार करना है। सुग्रीव बहुत गुस्से हुए, बोले वो राजा थे, उन्होंने कई कारण बताए क्यों हमें इसको तिरस्कृत कर देना चाहिए। भगवान राम ने वो अमृतत्व के शब्द बोले, अगर कोई भी व्यक्ति एक बार भी, चाहे वो कोई भी हो, एक बार भी कहता है, सच्चे दिल से कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं आपका हूं, मैं उसको क्षमा कर दूंगा सारे अपराधों को, उसको सुरक्षा प्रदान करूंगा हमेशा के, मैं उनको अपने के रूप में सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि कुछ भी, अगर रावण स्वयं भी अगर मेरे पास स्वयं आता है, मेरी शरण लेने के लिए आता है, मैं उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करूंगा। सुग्रीव और सब रोए, हाँ मेरे प्रभु, हम विभीषण को स्वीकार करते हैं। विभीषण को राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। जब भगवान प्रकट हुए, वे करुणा सिंधु अपने करुणा के सागर, प्रेम का सागर दिखा अपने भक्तों के प्रति, उन सबका जो अंतिम में है, सबसे ऊंचा जो दायरा है ये प्रेम का, वो प्रकट होता है, वो ब्रह्म में प्रकट होता है। ये परम धाम है, श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में जब धरती पे आने का निश्चय किया, ब्रह्मा जी के एक दिन में वो एक बार ही आते हैं। कृष्ण स्वयं आते हैं और वृंदावन की क्रीड़ा प्रकट करते हैं। इसका मतलब 8,640,000,000 साल में एक बार आते, भगवान श्री कृष्ण राधारानी को अपनी योजना बताई, उन्होंने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। सीता अयोध्या त्यागने को तैयार थी 14 वर्ष के लिए राम के साथ रहने के लिए, और श्रीमती राधारानी भौतिक दुनिया में आने को तैयार थे, जन्म मृत्यु के स्थान पे जिसमें ईर्ष्यालु असुरी व्यक्ति हैं, कृष्ण मुस्कुराए, बोले हाँ हम साथ में जाएंगे, मुझे खुशी नहीं होगी जब तक कि वृंदावन का जंगल नहीं है, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी। कृष्ण बोलते कि मुझे पता है, मैंने उनको भेज दिया वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, ये सब प्रकट हुआ है श्रीमती राधारानी की इच्छा से प्रकट। वृंदावन का स्वभाव है श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया, जगन्नाथपुरी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वो हेरा पंचमी उत्सव मना रहे थे। वो जो उत्सव है इसमें जगन्नाथ कृष्ण वो जगन्नाथ मंदिर छोड़कर जाते, जो इस लीला में द्वारका प्रतिनिधित्व करता है कुरुक्षेत्र, जिससे कि गुंडीचा जो कि वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है, वो वृंदावन। और जैसे जगन्नाथ वृंदावन के बगीचे में आनंद ले रहे हैं, लक्ष्मी देवी एक पालकी में आते और बड़े गुस्से में, क्यों कृष्ण छोड़ कर गए, सब ऐश्वर्य को छोड़कर ये गुंडीचा में क्यों रह रहे हैं, वृंदावन जंगल में क्यों रह रहे हैं। बड़ा सुंदर उत्सव, चैतन्य चरितामृत पढ़ना आप। जैसे जब ये सब चल रहा था, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से कहने लगे, कृपया हमें बताइए वृंदावन के मीठे रसों का वर्णन करिए। श्रीवास ठाकुर मुस्कुराने लगे और वो कहने लगे, ये देखो हमारी लक्ष्मी देवी का ऐश्वर्य देखो, उसकी तुलना में वृंदावन में जो भी है, कुछ फूल हैं, कुछ पत्तियां हैं, सब खनिज हैं, मोर के पंख हैं, गुंज का ये गोपियां क्या करते हैं, ये गायों का दूध निकालते हैं, वो मक्खन निकाल, लेकिन मेरी लक्ष्मी जय। अब सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं जो कि मणियों से सजा हुआ है, भगवान चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे, बोले श्रीवास आप नारद मुनि की तरह जो कि मध्यत पैदा करे ऊंचे उद्देश्य के लिए, आपका प्रभाव जो है वैकुंठ से हो गया है, लेकिन स्वरूप दामोदर वो वृंदावन के भक्त हैं, उनको ये सब ऐश्वर्यों की बिल्कुल जानकारी नहीं, वो सिर्फ शुद्ध भक्ति जानते हैं। स्वरूप दामोदर हमें बताइए वृंदावन क्या है, और स्वरूप दामोदर बताने लगे, कृपया ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय श्रीवास, अनंत सागर के समान द्वारका के जो ऐश्वर्य वैकुंठ, वो छोटे से बूंद के समान उसकी तुलना में। कृष्ण भगवान है, उनके अंदर सारे छह ऐश्वर्य हैं, पूरा ज्ञान, सुंदरता, यश, सुंदरता, बल, वैराग्य, और शक्ति। खाली वृंदावन में है ये सारे छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप से दिखाए जा रहे हैं। वृंदावन के स्वाभाविक ऐश्वर्य हैं आत्मा चिंतामणि है, हर जो दान है वो ज्यादा मूल्यवान है, सारे वैकुंठ लोकों से भी, क्योंकि हर जो धूल का कण यह है, क्योंकि हमारे हृदय को पवित्र बनाने की योग्यता है उसमें। और पेड़ जो है वृंदावन के वृक्ष जो है कल्प वृक्ष, सब इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और ब्रजवासी कुछ नहीं चाहते, बस वो उस पेड़ से फल फूल चाहते हैं। और गाय, वृंदावन में अनंत गाय हैं, ये सब कामधेनु गाय, और हर एक गाय जो है अनंत दूध दे सकती, और वो दूध जो है अमृत से भी ज्यादा मीठा है। और वो गाय वो सब जगह पे घूम रहे हैं, ब्रजवासी कुछ नहीं चाहते। और वृंदावन में सब बात करना गीत होते हैं, और चलना जो नृत्य होते हैं, और सब पानी जो है अमृत होता है, और साथ में सहचर जो है उनकी मुरली होती है, और वो मुरली जो है सबके हृदय में प्रेम की भावना प्रकट करती है। कृष्ण और उनके पार्षदों में जो प्रेम की भावना है वो परम श्रेष्ठ है। हर एक चीज वृंदावन में जो सबसे ऊंचा निस्वार्थ प्रेम प्रकट कर रहे हैं, अपने भक्तों को प्रेम प्रकट कर रहे हैं। ये श्रीवास, ये वृंदावन का ऐश्वर्य है। जब श्रीवास ने सुना, वो ताली बजाने लगे, मुस्कुराने लगे, जोर से हंसने लगे और डांस नृत्य करने लगे। और ये देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, वो भी नृत्य करने लगे, और स्वरूप दामोदर कहने लगे, और गाओ वृंदावन की महिमा गान करते रहो। और जैसे स्वरूप दामोदर गा रहे थे, बोल रहे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा नृत्य करने लगे, और बोलो और गाओ। और स्वरूप दामोदर बोले, गाने लगे, और वृंदावन धाम की महिमा, और जैसे बोल रहे थे कि लाखों मुंह हैं, और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, और राधा रानी के प्रेम इतने असीमित भाव में असीमित हो गए श्री राधा के भाव से, कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का रूप प्रकट किया। और नित्यानंद प्रभु ने दूर से देखा, और राधा रानी के भाव में देखा, और दूर से प्रणाम किए, पास में नहीं आ सके। नित्यानंद प्रभु जी नृत्य करने नित्यानंद प्रभु गए और रोकने के लिए, भगवान नृत्य करते रहे एक घंटे दो घंटे, और गा रहे थे, सब लोग गा रहे थे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वरूप दामोदर भगवान बोले, सब लोग बहुत थक गए हैं, आपको छोड़कर बाकी सब थक गए हैं, कृपया नृत्य करना बंद करो अभी। और श्री चैतन्य महाप्रभु वो बाहर चेतना लौट कर आए और अपने स्थान पर लौट गए। यमुना के पार एक स्थान है बेल वन, जहां पर लक्ष्मी देवी वो वैकुंठ को छोड़कर आए, भगवान नारायण को छोड़कर, गोपियों का प्रेम आस्वादन करने। भगवान चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को बोले श्रीरंगम में, वेंकट भट्ट ने बताया कि कृष्ण और नारायण एक हैं, और क्योंकि नारायण कृष्ण एक हैं इसलिए कोई पतिव्रता भंग नहीं हो रहे। चैतन्य महाप्रभु बोले, दोनों वास्तव में एक ही हैं। लक्ष्मी परम पतिव्रत, फिर भी उनको रास्ते में प्रवेश क्यों नहीं मिला? 10,000 साल को बेल वन में उसने तपस्या की, और फिर कृष्ण ने अपना त्रिभंग रूप प्रकट समर्पण कर दिया। उनको रासलीला में प्रवेश नहीं किया दे। क्योंकि वो अपने भगवान को अपने प्रभु के रूप में मान रहे थे। अपने आप को लक्ष्मी मान रहे थे, गोपिया बनना कि दूध निकालना और सिर पर गोबर धारण करना। ये बेल वन जो है सब धामों में ये बताते, ये ब्रज भूमि के भगवान शिव जी भी वो सब कुछ त्याग करके वो भी गोपी के भाव को ग्रहण करना चाहते थे, और अपनी अपनी योगिक सिद्धि के द्वारा, अपने परम ज्ञान के द्वारा वो समझ गए इससे बढ़कर आध्यात्मिक अनुभव नहीं है कृष्ण की गोपियों के सिवा। आपको रासलीला प्रवेश करना है तो आपको गोपी का रूप धारण करना होगा, को मानसरोवर जाने के लिए कहा गया। मानसरोवर यमुना किनारे वो स्थान है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी अपने आंसुओं से, उन्होंने कृष्ण के विरह में आंसू से एक कुंड भर दिया, और राधा रानी के आंसुओं का जो शक्ति है वो भाव प्रेम, उसने गोपी का भाव प्रकट हुआ और उनको एक उनको सेवा दी गई रासलीला के रक्षक के रूप में, गोपेश्वर महादेव के रूप में, कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने शिवजी की मूर्ति स्थापना की गोपेश्वर, और शाम के समय उसको गोपी की तरह सजाया जाता है, बहुत सुंदर दर्शन होता है। भगवान शिव जी जो है साड़ी और नथुनी पहनते हैं, वो इस रूप में ही जाने में पसंद है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गहरी सेवा अर्पण की जा सकती है। और ब्रह्मा जी सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, 14 लोकों में हैं,